यह श्री राम ने पूछा तो उन्होंने उस दिन मस्ती छागी कि आज तुम्हारी महिमा बन जाएगी। उन्होंने कहा हाँ जी हमारे हाथ से कोई भी पत्थर भी नहीं डूबते, लोहे की स्टील की वस्तु भी नहीं डूबती, सब तैर जाती है। श्री राम ने कहा भी एक परीक्षण करवाइए, परीक्षा दीजिए, कोई पत्थर उठाकर डालिए। अब उस दिन नल और नीलमार खा गए, भूल कर गए, उन्होंने परमात्मा याद नहीं किया और उठा के पत्थर और रख दिए। अहम था उनके अंदर, उस दिन अभिमान घर कर गया था, उस अभिमान दृष्टिकोण से महिमा की भूख के कारण उन्होंने वो पत्थर रखे, पानी में डूब गए, जल में तैरे नहीं। नल ने भी रखा और नील ने भी रखा, फिर एक एक और रखा। उनका बहम सा हो गया, रोज तैरा करते आज क्या बात होगी। और उधर से उन्होंने अपनी हार नजर आने लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने विपर रूप में खड़े समुद्र देव की तरफ देखा और कहा, मानो कहना चाहते हैं कि तू झूठ बोलता था, मुझे बहका रहा था, इनके हाथों में कोई ऐसी पावर शक्ति नहीं है जिसे समुद्र पत्थर तर जाए। श्री रामचंद्र जी की नजर को देखकर समुद्र ने नलनील से कहा कि नलनील, तुमने आज अपने भगवान को याद नहीं किया, अपने गुरुदेव को याद नहीं किया, नाला को अपने गुरुदेव को याद करो। तब नलनील को अपनी भूल याद आई, तब उन्होंने परमात्मा को याद किया, मुनिंद्र जी को याद किया, अपने परमेश्वर को याद किया। उसी समय परमात्मा दूर से आते हुए नजर आए, नलनील की दृष्टि पड़ी, देखा कि महाराज जी आ रहे हैं, वो आगे स्वामी जी, वो आगे महाराज जी, मुनिंद्र जी, हमारे गुरुदेव आगे आगे। तो प्रभु निकट आ गए, श्री राम ने चरण दिए और कहे, ऋषिवर मेरे ऊपर बहुत आपत्ति आई हुई है, ऐसे ऐसे लंका के ऊपर धावा बोलना है, समुद्र पे पुल बनाना है, और आज ये नल नील के आपके सेवक, आपके सेवक नल नील के हाथों से भी पत्थर नहीं तैर रहे हैं। परमात्मा बोले, अब इनके हाथों से कभी पत्थर नहीं तैरेंगे, कोई भी वस्तु नहीं तैरेगी, क्योंकि ये अपनी औकात भूल गए। तब श्री राम ने कहा कि हे ऋषिवर, जब अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो, मुझ पर भी कृपा करो कि समुद्र पर पत्थर तैर जाए, किसी प्रकार ये पुल बन जाए। तब परमात्मा मुनिंद्र जी ने अर्थात कबीर देव ने कहा कि मैं इस बहुत बड़े एक पहाड़ था वहां पास में ही, उसके चारों तरफ एक रेखा लगा दी है। परमात्मा ने चारों तरफ अपने उस डंडी से, छड़ी से एक रेखा खींच दी चारों तरफ के उस पहाड़ के, और कहा कि इस रेखा के बीच बीच के पत्थर उठा लो, सारे तैर जाएंगे। उसका भी परीक्षण किया गया, एक पत्थर उठाकर लाया गया और उसको त्रास करके, नलनील कारीगर भी थे, ये राज थे, उन्होंने उसकी काटा पीटी करके और समुद्र पर श्री राम ने अपने ने रखा तो वो तैरने लग गया, औरों ने भी रखा तो वो भी तैरने लग गया, जो भी लाकर उठा के लाया वही तैरने लग गया। तब जी में जी आया और मुनिंद्र जी का शुक्र मनाया। राम और लक्ष्मण ने भगवान मुनिंद्र जी के चरण छुए और कहा, ऋषि जी आपने बहुत उपकार किया। परमात्मा ने कहा, संत उपकारी ही हुआ करते हैं, परोपकारी होते हैं। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले भक्त की ते धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। अब पुण्यात्माओं इस प्रकार समुद्र पर पुल बना और रावण का वध हुआ। अब क्या होता है, पहले हम सुना करते थे इन जैसे रामचंद्र जी ने विभीषण को लंका का राज दे दिया, रावण का बक्कल उतरा, उसका विनाश हो गया, सारे परिवार का नाश हो गया, मंदोदरी बची, विभीषण बचा। अब एक तो इस कथा से हमने ये शिक्षा मिली है कि जो भगवान शंकर जी का तमोगुण का उपासक था रावण, और कितनी कठिन तप करके, बहुत ज्यादा तप किया अपने शीश तक चढ़ाकर लंका प्राप्त की, और वह रही भी कोई ना उसके पास, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला विभीषण ना इतना तप किया, केवल अपनी मर्यादा में रहता हुआ भक्ति की, उसको लंका का राज्य भी प्राप्त हो गया। उसके भाग्य में नहीं था, उस परमात्मा ने कबीर परमेश्वर ने उसके भाग्य में लिख दिया, क्योंकि उसने उसकी साधना स्वीकार कर ली। अब कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर भगवान कहते हैं, जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो मेरा इधर ले ध्यान। ध्यान धरण का अर्थ है कि मेरे में ही आस्था कर। जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए हमरा धर ले ध्यान, तेरे भाग में ना हो तो भी दे दूंगा, लेकिन साथ में इसके अवगुण भी बताता हूं कि यहां पर पूरी पृथ्वी का भी राज्य तुझे मिल जाए, और यदि आपके पास भक्ति नहीं है, सत साधना नहीं है, तो व्यर्थ है तेरे उस राज्य की प्राप्ति को। लानत है उस राज्य की प्राप्ति को। क्या कहते हैं, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई के करज नहीं नाम से ने। यदि तीन लोक का राज्य भी इस जीव को कोई दे दे, और यदि उसके पास सत्य भक्ति नहीं है, नाम में रुचि नहीं है, तो नो कहें क्या बधाई दे रहे उसको, वो तो अपना जीवन व्यर्थ कर रहा है। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं कि ये राजपाट अच्छी चीज नहीं है, ये तुम्हें उलझा कर रख लेगा, इस समय पाप बहुत हो जाते हैं। लेकिन राजा न्याकारी हो, सतगुरु का उपदेशी हो, और प्रजा को अपने बच्चों की तरह पाले, कति अन्याय नहीं करे, चाहे अपना बेटा भी कोई गलती करता उसको भी सजा अवश्य दे, उसको भी उसके साथ भी न्याय हो, फिर वो राजा मार नहीं खाता, वो राज करते हुए भी परमात्मा प्राप्ति कर सकता। जैसे राजा अम्बरीश थे, उन्होंने जैसी भी साधना मिली थी, राज करते हुए भी उसने न्याय दिया, प्रजा सुखी रहती थी और अपने राजा को एक ऋषि की तरह जानती थी। लेकिन जैसी भी साधना की, वो बहुत अच्छी प्राप्ति की उसने, परंतु मोक्ष तो फिर तभी हुआ जब वो परमात्मा के चरणों में गुरु नानक जी के रूप में आए थे। क्योंकि राजा अम्बरीश वाली आत्मा राजा जनक बने, राजा जनक वाली आत्मा फिर गुरु नानक देव जी हुए, फिर कबीर साहब की शरण में आए, उनको सतलोक दिखाया, तब श्री नानक जी को सचखंड ले गए और वहां से वापस छोड़ा, शिव नानक जी का कल्याण हुआ। अब हम सुना, एक भक्त ने, जब ये दास गांव गांव में सत्संग करने जाता था, एक फौजी था, बड़ा नेक आत्मा, उसने एक उनके घर में ही पाठ होने लग रहा था, उसका भाई नाम ले रहा था, वो आया ही था छुट्टी, तो दो दिन सत्संग सुनकर उसने पूछा कि हे महाराज जी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि मैं रामायण पर बहुत विश्वास करता हूं, मैं श्री राम का कट्टर पुजारी हूं, मैंने रामायण को पढ़ा है, उसमें दो बात खटक रही मेरे, एक तो ये खटक रही है कि उस लंका में सारे राक्षस थे, शराब पीनी है, मांस खानी है, और कोई भी सारे कुबद्धि इकट्ठे हो रहे थे, तो विभीषण और मंदोदरी के पास वो राम 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 नाम की बात कितना आगी, उनको ऐसा ज्ञान कहां से प्राप्त हो गया कि सारी नगरी उन दो ही भगत थे। और दूसरी ये बात खटक रही है हाँ, उसने यही प्रश्न किया कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कहीं नहीं मिला। मैं जहां भी मुझे हिंदू धर्म का कोई बड़ा मठ दिखाई देता है, शंकराचार्य जो बने हुए, मैं उनसे भी जाकर बात कर चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, ये मेरे को कोई संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे पाए। मैं आपसे ये प्रश्न करता हूं कि ये के कारण था। मैंने बताया कि मेरे पास इसी मर्ज की दवाई है भाई, ये समस्या का समाधान मेरे पास है। तब मैंने यह कथा सुनाई, तब उसके समझ माई को हो तेरे की सारी बीमारी तैयार थी। यानी ये था वो कारण, पूर्ण परमात्मा के शिष्य थे वो दोनों। तो पुण्यात्माओं, पहले हम सुनते थे ना, कभी तक कहते थे श्री राम ने पत्थर तिरा दिए, कदे कहते थे नलिन ने पत्थर तिरा दिए, कदे कह करते हनुमान ने राम राम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। या सारी जो है ना उलट पुलट सी कथा, दंत कथा बना रखी थी। अब ये तत्व ज्ञान के आधार पर ये सारी सिद्धि हो गई है। अब राम नाम लिखा कर हनुमान जी क्या करते थे, वो राम राम कोई जाप नहीं करते थे हनुमान जी जाप करते थे ओम का, और वो भी संत से प्राप्त करके जाप किया जाता था। तो वो यूं नहीं कहा करते किसी को कि ओम ओम जप ले भाई, भगवान बज ले। वो उसने कोडवर्ड बना दिया ऋषियों ने कि अपने जो साथी हैं भगत हैं, कोई उनको नाम की भूल पड़ जाता है, नो कहा करो राम राम भाई, तो वो सामने वाला भी राम राम कहते ही आपको राम राम कहेगा, और उसको मंत्र याद आ जाएगा जो भूल पड़ गई है, जो गुरुदेव ने दे रखा है, जो चलते फिरते उठते बैठते काम करते करते सिमरन करना होता है। तो या तो वो सुमन कर रहा होगा तो कहेगा राम राम भाई, राम राम के मैं सुमन कर रहा हूं, नहीं कर रहा होगा तो वो फिर भी कहेगा राम राम भाई राम राम, अर्थात मुझे भूल पड़ गई थी, मन मन में सोचेगा ये संकेत दे दिया इस भगत ने, नाम सुमन करूं, तो आध घंटे तो उसका याद जरूर रहता है। इस दृष्टिकोण से राम राम एक कोड वर्ड था, और जाप करते थे वही जो गुरुदेव ने दे रखा था ओम मंत्र का, क्योंकि इन ऋषियों को केवल ओम नाम का ही ज्ञान था, आगे नहीं था। सो ये दूसरा मंत्र जो तत् है, ये भी यहां पर परमात्मा ने आकर के प्रकट किया है और किसी ने नहीं। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जंग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। सतनाम का जो दूसरा अक्षर है वो भी हम ही लेकर आए थे, लेकिन सार नाम हम अभी तक किसी को नहीं बताया है, केवल अपने जो तत्वदर्शी संत मेरा आएगा उसको ही प्रकट ये भेद खोला जाएगा। और अधिकारी के बिना अगर ये मंत्र जो पता भी लग जाता है कोई अपे जाप करता, उसे कोई लाभ नहीं होगा। जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट लेटर बना लिया अपने आप, चार लाइन होते हैं, यू आर एवर अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट सच एंड सेट, योर पेड सैलरी विल बी सच एंड सेट, और नीचे एक साइन करता है वो अधिकारी, तो वो अधिकारी के साइन किए हुए वो लाइन जो चार है कामयाब होंगी, और उसने कोई भी आप पे लिख के टाइप करवा ले, कोई दस्तक मार ले, तो वो कामयाब नहीं होती, वो कहीं वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम की जो कीमत संत से उपदेश लेने के बाद ही जाप करने से होती है, अपने आप अपर टे लगाने से कोई लाभ नहीं होता। तो हनुमान जी क्या करते थे, पहलवान थे तगड़े, और सबसे बड़ा पत्थर उठाया करते नो 50-60 मन का, और उठाने से पहले उसके ऊपर राम लिख देते थे राम, क्योंकि एक विधि है परमात्मा पाने की, चाहे वो किसी भी भगवान की आप भक्ति करो उसके लिए एक जैसा ही प्रोसीजर है, लेकिन मंत्रों का अंतर है, नाम का अंतर है, लेकिन सभी ने भक्ति कैसे करनी होती है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। काम करते करते जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 8 मंत्र 7 में कहा है, अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा नाम भी जप, इस प्रकार तू मुझे प्राप्त होगा। तो काम करते हुए भी युद्ध से ज्यादा बिजी किसी काम में नहीं होता इंसान, और युद्ध करते हुए भी जो भगवान का नाम जपने को कहा है तो अन्य काम में तो कोई दिखता को नहीं। तो हनुमान जी क्या करते थे, उसके ऊपर पूरा बुड्ढा राम लिख देते थे और पत्थर ने अपना धरके कंधे पर और चल पड़ते थे कि सामने वाले जो पत्थर डालकर आ रहे होते हैं वो सामने देखते हैं उस पर राम लिखा है, तो वो सभी फिर अपना मन मन में वो सिमरण शुरू कर देते थे। इस दृष्टिकोण से हनुमान जी अपना नित कर्म भी कर रहे थे और पत्थर भी ढो रहे थे, लेकिन वो पत्थर तिरे थे उस परम पिता की सबद शक्ति से, उनकी रजा से, ना श्री राम से तिरे, ना नलनील से तिरे, ना हनुमान से के उस राम नाम से तिरे। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का प्रमाण दे करके गए थे और साथ में यथार्थ ज्ञान भी प्रचार किया था, लेकिन ऋषि लोगों ने कभी भी इस तत्व ज्ञान के पंजे लागण नहीं दिए। इस तत्व ज्ञान को जनता तक नहीं जाने दिया जो अब वर्तमान में आपके समक्ष पहुंच रहा है, क्योंकि अब आप शिक्षित हैं और भक्ति काल आ गया है, भक्ति का जो समय अब आ गया है जो प्रभु ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था। द्वापर युग में परमात्मा करुणामय नाम से आए थे। अब त्रेता युग में आपने सुना कि श्री राम रूप में जब विष्णु जी आए थे उन्होंने कितने कष्ट उठाए। अब श्री राम पूर्ण परमात्मा नहीं है, ये विष्णु जी के अवतार हैं, सतगुण विष्णु जी के अवतार थे और तीनों गुणों की भक्ति करने के लिए गीता जी में मना किया हुआ है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों को मूर्ख कहा है गीता जी में, और राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच कहा है। पुण्यात्माओं, ये दास अपनी ओर से नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल कर यथार्थ जो के तू आपके समक्ष रख रहा हूं। आप बुद्धिमान हो, शिक्षित हो, आप स्वयं भी अपनी आंखों से देख सकोगे। अभी आपको गीता जी दिखाऊंगा, उससे पहले इसी विषय में कुछ दो बात बताना चाहता हूं। कबीर परमात्मा समझाया करते थे कि तुम नहीं मानते इस बात को कि हम मान लेते हैं कि तुम्हारे श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पत्थर तरा लिए और पुल बना लिया, इसलिए आपने इसको भगवान मान लिया। तो क्या कहते हैं भाई, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, समुद्र पाट लंका गयो सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने सब पी लिए इनम कौन करता रे। यदि आप लंका इस पुल के समुद्र के ऊपर का पुल बना लेने से, यानी समुद्र को पाठ देने मात्र से श्री रामचंद्र जी को भगवान मान रहे हो, तो अगस्त ऋषि ने तो सातों को एक ही घूंट में पी लिया था, तो इनमें कौन सा भगवान। गोवर्धन धारो कृष्ण जी द्रोणगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठा रहा इनम कौन भगवंत। यदि आप श्री कृष्ण जी को इसी कारण से भगवान मानते कि उन्होंने उस गिरवर को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, हनुमान ने तो आप ही की कथाओं में, जैसे आप दंत कथा सुनाते हो या जैसे भी कथाएं उनमें लिखा हुआ है, आप कहते हो कि शेष नाग ने सारी सृष्टि उठा रखी है, शेष नाग के सिर पर सारे ब्रह्मांड, पूरे सारे लोग एक ब्रह्मांड के रखे हुए हैं, और एक तरफ से कहते हो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया इसलिए भगवान न पड़ा था, भगवान न पड़ा था, तो परमात्मा कहते हैं श्री राम हनुमान जी ने द्रोणागिरी उठाई थी जब लंका के समय के युद्ध के समय लक्ष्मण को तीर लग गया था, तो हनुमान जी वो द्रोणागिरी ठाक लाए थे जिसमें संजीवन बूटी थी। तो इसमें भगवान कौन सा होया? अगर पत्थर पहाड़ उठाउन मात्र से ही भगवान मानते हो तो शेष नाग ने तो या पृथ्वी भी गेल ठा रखी थी, जिसके ऊपर खड़ा होकर श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन ठाया था। अब कितनी प्यारी व्याख्या दी है, निर्णायक ज्ञान दिया है परमेश्वर ने कि गिरिवर धारो कृष्ण जी, गोवर्धन धारो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग पृथ्वी सब सृष्टि उठारा, इनम कौन भगवंत। तो इनम कौन सा? राम भाई। अब आपको दिखाते हैं तीन गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आपको द्वापर युग में परमात्मा आए इसका प्रकरण सुनाएंगे और इसमें फिर आपको कुछ गीता जी का अंश दिखाएंगे। पुण्यात्माओं, त्रेता युग में, द्वापर युग में परमात्मा आए करुणा में नाम से। उसमें उन्होंने अपने ज्ञान का प्रचार किया एक वाल्मीकि कुल में। वाल्मीक कुल में एक सुदर्शन नाम का भगत था और परमात्मा कबीर जी ने उस पुण्यात्मा को समझाया, उसके हृदय में यो ज्ञान समा गया। उस सुदर्शन जी ने परमात्मा से उपदेश ले लिया और खूब डट के भक्ति की। पुण्यात्माओं, आपने गीता जी को पढ़ा है, आपने गीता जी को पढ़ा है, अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद भी कर रखा है। गीता जी की मूल संस्कृत ज्यों की त्यों है, वो वास्तविक ज्ञान है। अनुवादकर्ताओं ने जो अनुवाद किया है वो यथार्थ नहीं किया, उन्होंने लोकवेद के आधार पर किया है। अब उस भक्त ने, हां जो एक प्रश्न और था मेरे दिमाग नहीं आया, मैं नहीं आया था, अब आ गया। उस फौजी ने उस गांव में ये प्रश्न और किया था कि द्वापर युग में पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की थी और उसमें एक शर्त रखी थी कि एक पंचायन संख, एक संख रख दिया था अलग से, और उसमें शर्त रखी थी कि जब उस समागम का समापन होगा यज्ञ का और उसमें भोजन करेंगे सभी संत भक्त, यदि वो संख बज गया तो यज्ञ संपूर्ण होगी, अन्यथा अधूरी रह जाएगी, वह पूर्ण नहीं हुई, उनको लाभ नहीं मिलेगा पांडवों को, ये श्री कृष्ण जी ने कहा था। तो मेरे से कहा कि महाराज जी मैं इस बात से चक्कर काट रहा हूं और किसी के पास ये मेरे को उत्तर नहीं मिला इसका, कि उसमें लिखा है कि महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण ने भी भोजन खा लिया, सभी वशिष्ठ मुनि जैसी तोप वहां बैठी थी उनने भी भोजन खा लिया, 9 नाथ 84 सिद्ध बैठे थे उनने भी भोजन खा लिया, श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, दुर्वासा जैसी तोप ने भी भोजन खा लिया, पर शंख नहीं बजा। एक सुदर्शन नाम का एक आया था साधु, उसके भोजन खाने से वो शंख बज गया। अब मैं प्रश्न करता हूं भाई, उस सुदर्शन में इसी शक्ति कितना आ गई जो श्री कृष्ण में भी ना थी, जिसको हम पूज रहे थे। तो किसी मंडलेश्वर के पास ये जवाब नहीं था, वो कह देते थे श्री कृष्ण जी की लीला थी। रकमाल की बात है, श्री कृष्ण ने खुद रोटी खा ली, खाना खा लिया, जब वह लीला की कहां गई थी? मेरे यह बात गले नहीं उतरी, तब मैंने उसको ये कथा सुनाई कि पूर्ण परमात्मा ऐसे ऐसे आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान दिया था और इस सत्य नाम की भक्ति से ये भक्त में ऐसी सिद्धि शक्ति आ जाती है, ऐसी उनके अंदर भक्ति कमाई बन जाती है। तब उस भक्त ने उपदेश लिया, उस फौजी ने उपदेश लिया कि ये वास्तव में ये ज्ञान तत्व ज्ञान है और अभी तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिला था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि जब तक इस प्राणी का संत से दूर नहीं होगा ये भक्ति नहीं कर सकता, डगमग होता रहेगा। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गीता ज्ञान, गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने गीता जी को अनुवादित करते समय श्री कृष्ण जी को ही सर्वस्व मान करके उसके ऊपर सारा अनुवाद कर दिया, जबकि गीता जी का अनुवाद, गीता जी का जो ज्ञान है श्री कृष्ण जी ने नहीं दिया। अब ये बात भी आपको खटकेगी जो पहली बार सुन रहा होगा, जो पहली बार आज सुन रहा होगा उसके यह बात खटकेगी कि ले भाई संत जी ने यह और नई बात बता दी कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा। और किसने कहा? श्री कृष्ण जी के शरीर में ये ज्योति निरंजन काल भगवान प्रवेश कर गया जैसे प्रेत प्रवेश करते हैं, और श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर वो बोलने लगा जैसे भूत बोलते हैं। आप यहां देखते हो प्रेत आत्माएं बोलती हैं, कोई कुछ कहती है, कोई कुछ कहता है, मैं फलाना था, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और जब वो भूत निकल जाता है तो उस शरीर वाली आत्मा को ये पता नहीं कि मैंने के बोला था, और ही बताते हैं ये ऐसे कह रहा था, न्यू कह रहा था, इसमें भूत ऐसे बोल रहा था। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण जी के साथ हुआ। श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी इस ज्योति निरंजन काल के पुत्र हैं और इसके अधीन है। वो 1000 भुजा का भगवान, 1000 कला का भगवान, ये 4 भुजा के अर्थात 16 कला के भगवान है। कहां थे 1000 हॉर्सपावर की मोटर और कहां 16 हॉर्सपावर की, बहुत अंतर हो जाता। और पूर्ण परमात्मा सुप्रीम पावर है, वो तो पावर हाउस समझो, उसके आगे सब फेल हो जाते हैं। लेकिन यहां जो क्रिया हो रही है किस ब्रह्मांड में, ये सब ज्योति निरंजन काल के द्वारा ही की जा रही है। आपको कुछ गीता जी का ज्ञान सुनाएंगे और सबसे पहले ये प्रमाणित किया जाएगा कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं, काल भगवान ने बोला था। गीता जी अध्याय नंबर 11 के मंत्र 16